स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 21 अगस्त दिन बुधवार, ट्रंप ने एक बार फिर कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता करने की इच्छा जताई।
एंड कश्मीर इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्लेस, यू हैव द हिंदूज एंड यू हैव द मुस्लिम्स एंड आई वुडंट से दे गेट अलोंग।
पाकिस्तान ने कहा वो अनुच्छेद 370 के मामले को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में ले जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने से लद्दाख के लोग आमतौर पर खुश, लेकिन कुछ चिंताएं भी।
जो हमारा स्पेशल प्रिविलेज है जो लैंड प्रोटेक्शन का, वो हट गया। फिर वहाँ से जो बाहर से लोग आएंगे यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप हो जाएंगे, फिर मेरे ख्याल से लगता है कि मुझे मेजोरिटी रूल चलेगा। फिर उसके बाद
भारतीय विदेश मंत्री आज जाएंगे नेपाल, और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार आदर्श राठौर से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस हफ्ते के आखिर में वो फ्रांस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। उधर पाकिस्तान ने कहा है कि वो कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उठाने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने ये बात कही है। ट्रंप प्रशासन ने ताइवान के साथ F-16 लड़ाकू विमानों का सौदा करने के लिए मंजूरी दे दी है। इस सौदे के तहत ताइवान को अमेरिका 66 लड़ाकू विमान बेचेगा। कई दशकों में पहली बार इतने बड़े स्तर का कोई सौदा हुआ है। अमेरिका की डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी ने मंजूरी के लिए इस सौदे को कांग्रेस के सामने पेश किया है। एजेंसी ने इस सौदे को अमेरिका के हितों और ताइवान की रक्षा के लिए जरूरी बताया है। ताइवान को अपना हिस्सा बताने वाले चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानने वाला चीन इस सौदे का विरोध कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को खारिज किया है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मंदी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मंदी देखने के लिए बेताब हैं। अमेरिकी विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि आने वाले 2 सालों में ग्रोथ नेगेटिव रह सकती है। इस अनुमान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की ये पहली टिप्पणी है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मंदी ठीक शब्द नहीं है, क्योंकि ये ऐसा शब्द है जिसे कुछ लोग और मीडिया की ओर से इसलिए उछाला जा रहा है क्योंकि वो मंदी देखना चाहते हैं। मंदी आने की आशंका अमेरिका में दूर दूर तक नजर नहीं आती। ये थे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में 37 लोगों को बस में बंधक बनाने वाले की पुलिस की गोली से मौत हो गई है। यह घटना रियो शहर के पास एक पुल पर हुई, जहां एक शख्स ने 4 घंटों तक लोगों को बंधक बनाकर रखा। इस शख्स के पास खिलौना बंदूक थी और उसके परिजनों का कहना है कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ था, मगर रियो के गवर्नर विल्सन विर्जल का कहना है कि पुलिस ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। जो हुआ दुर्भाग्य से उसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। हम चाहते थे कि सभी लोग सुरक्षित रहें, मगर बंधक बने लोगों को बचाने के लिए हमें ये फैसला करना पड़ा। मिलिट्री पुलिस ने बहुत ही सूझबूझ के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ये थे रियो के गवर्नर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इटली के प्रधानमंत्री जुसापे कांते ने अपना पद छोड़ दिया है। राष्ट्रपति ने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। इससे पहले कांते ने सीनेट में भाषण देते हुए उप प्रधानमंत्री मात्तेओ सल्विनी पर चुनावों से मिले जनादेश की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। अब राष्ट्रपति पार्टियों से नई सरकार बनाने पर चर्चा करेंगे। अगर सरकार नहीं बन पाई तो मध्यावधि चुनाव होंगे। इस प्रक्रिया के पूरे होने तक कांते कार्यवाहक सरकार के प्रमुख बने रहेंगे। अमेरिका और डेनमार्क में लाखों लोगों की स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियों के आधार पर किया गया एक शोध बताता है कि वायु प्रदूषण को मानसिक बीमारियों और अवसाद से जोड़ा जा सकता है। इसमें बाइपोलर और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर शामिल हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के नेतृत्व में किए गए इस शोध में मानसिक समस्याओं से जुड़े आंकड़ों की वहां की हवा की गुणवत्ता से तुलना की गई। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि प्रदूषण फैलाने वाले कण इंसानों को वैसे ही प्रभावित करते हैं जैसे वे जानवरों को करते हैं। कट्टरपंथी विचारधारा के प्रति पूर्वाग्रहों के आरोपों को लेकर फेसबुक ने अंतरिम रिपोर्ट जारी कर दी है। पूर्व रिपब्लिकन सीनेटर जॉन कॉयल ने इस रिपोर्ट में पाया है कि फेसबुक को दक्षिणपंथियों का विश्वास जीतने के लिए बहुत कुछ करना होगा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए फेसबुक के एक वरिष्ठ अधिकारी निक क्लेग ने कहा कि कंपनी इन चिंताओं पर गंभीरता से विचार कर रही है और अगर जरूरी हुआ तो नीतियों में बदलाव भी किया जाएगा। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है अगस्त की 22 तारीख और दिन है बुधवार। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत अमरीका से। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश की है। ट्रंप ने कहा है कि वो इस सप्ताह के आखिर में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ्रांस में मुलाकात भी करेंगे। भारत ने इसी महीने की 5 तारीख को कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य मिलने वाले प्रावधान को ख़त्म कर दिया था और साथ ही जम्मू कश्मीर को राज्य से घटाकर एक यूनियन टेरिटरी बनाने का फैसला किया था। इस फैसले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ गया है। सुनिए न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के अपने दफ्तर ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के मुद्दे पर एक बार फिर मध्यस्थता की पेशकश कर दी। उन्होंने कहा कि कश्मीर एक बहुत ही जटिल समस्या है। उनका कहना था कि मामला हिंदू और मुसलमान का है।
And Kashmir is a very complicated place. You have the Hindus and you have the Muslims and I wouldn't say they get along so great.
ट्रंप कह रहे थे कि ये मसला बहुत लंबे अरसे से चल रहा है और जटिल मामला है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें मध्यस्थता कर सकूँ। प्रधानमंत्री खान और प्रधानमंत्री मोदी से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। मैं तो प्रधानमंत्री मोदी से इसी सप्ताहांत फ्रांस में मुलाकात भी करूंगा।
कश्मीर इज अ वेरी टफ सिचुएशन एंड यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर डेकेड्स डेकेड्स शूटिंग आई डोंट मीन शूटिंग लाइक।
ट्रंप का कहना था कि वो भारत और पाकिस्तान के नेताओं से संपर्क में हैं, लेकिन भारत हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर किसी भी मध्यस्थता की पेशकश को रद्द करता रहा है। इससे पहले भी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के अमरीका दौरे के दौरान मध्यस्थता की पेशकश कर दी थी और कहा था कि उनसे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने मध्यस्थता करने के लिए कहा था, लेकिन भारत ने इस दावे को खारिज कर दिया था। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर सख्त तनाव को खत्म करवाने के मकसद से अमरीकी राष्ट्रपति की मध्यस्थता की इस पेशकश पर अमरीका में रहने वाले कश्मीरी क्या सोचते हैं, इसी बारे में जब मैंने एक अमरीकी कश्मीरी सनी से पूछा तो उनका कहना था,
कश्मीरी की सोच है कि कोई भी पावर वर्ल्ड का हो, वेदर प्रेसिडेंट ट्रंप हो या कोई भी हो, तो अच्छा रहेगा कि वो कोई भी मीडिएट करे कि ये जो दो कंट्रीज एक दूसरे को मरने मारने की धमकियां देते आ रहे हैं, वो कोई बीच में आके उनको समझाए, उनको एनफोर्स करे, बैठ जाओ सामने, आमने सामने बैठ जाओ, रिजॉल्व करो। ये ईगो वीगो करके कोई फायदा मिलने वाला तो है नहीं। अच्छा रहेगा कि दोनों एक जगह बैठ जाए, पूरा साउथ एशिया के लिए अच्छा हो जाएगा। हम कश्मीरियों का तो यही सोच थी कि कश्मीर इंडिया पाकिस्तान के लिए एक बोनस बन जाएगा कि उसकी वजह से दो कंट्रियां नजदीक आ जाएंगी, मगर अभी के टाइम पे जो हो रहा है तो सही नहीं हो रहा है। मतलब हमारे हिसाब से, कश्मीर के हिसाब से, तो ये कश्मीर के लिए भी बुरा हो रहा है, इंडिया के लिए भी बुरा है, पाकिस्तान के लिए बुरा है।
कश्मीर में 4,000 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की भी खबरें हैं। कुछ जगह पर कश्मीरियों द्वारा विरोध प्रदर्शन की भी खबरें आ रही हैं। उधर कश्मीर में सीमा रेखा पर दोनों देशों की ओर से एक दूसरे पर फायरिंग और कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबरें हैं। कश्मीर पर राष्ट्रपति ट्रंप का ये ताज़ा तरीन बयान सोमवार को ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के साथ और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ अलग अलग फोन पर बातचीत के बाद आया है। उस बातचीत में ट्रंप ने दोनों देशों से संयम की अपील की थी। इस सप्ताहांत राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बियरिट्स में G7 की बैठक के दौरान मुलाकात करेंगे। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
उधर पाकिस्तान ने कहा है कि वो कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने की योजना बना रहा है। इस बात का ऐलान पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने किया। जब से भारत ने अनुच्छेद 370 को ख़त्म करने का फैसला किया है, उसके बाद से बड़ी संख्या में कश्मीरी राजनेता, एक्टिविस्ट और अन्य लोग हिरासत में लिए गए हैं। ये संख्या तकरीबन 4,000 बताई जा रही है। अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए जम्मू कश्मीर में इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं पर भी पाबंदी लगी हुई है। इस बीच इस्लामाबाद पहुंचे पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के राष्ट्रपति सरदार मसूद खान ने कहा है कि वो कश्मीर में हालात बहुत ही नाजुक देख रहे हैं।
उसकी वजह यह है कि आज़ाद कश्मीर में मुसलसल फायर हो रहा है। मेरी इत्तला के मुताबिक 135 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं, सैकड़ों जख्मी हैं और उसके घर बर्बाद हुए हैं, दुकानें बर्बाद हो गई हैं, फसलें जला दी गई हैं, मवेशी हलाक कर दिए गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि वहाँ आज़ाद कश्मीर में एक बहरान है। क्लस्टर म्यूनिशन इस्तेमाल किया गया है जिस पर अक्वामे मुत्तहिदा ने पाबंदी लगाई हुई है, तो वहाँ भी एक बहरान है आज़ाद कश्मीर में, मैं आपको बता रहा हूँ।
ये थे पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के राष्ट्रपति सरदार मसूद खान। بھارت کے ودیش منتری ایس جے شنکر آج نیپال پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ بھارت نیپال کی سنیکت آیوگ کی پانچویں بیٹھک میں حصہ لیں گے۔ بی بی سی سنواد داتا بھومیکا رائے نے اس موقع پر نیپال کے ودیش منتری پردیپ کمار گیاوالی سے بات چیت کی اور سب سے پہلے یہی پوچھا کہ بھارت نے انوچھید 370 کو نرست کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے، اس کو نیپال کیسے دیکھتا ہے؟
نیپال آپ جانتے ہیں کہ یہ سارک کا ادھیکش بھی ہے، ہمارا پورا وشواس ہے کہ وہاں جو کچھ وکاس کرم ہے وہ صحیح دشا میں آگے بڑھے گی، اس سے ہمارے چھتریہ شانتی اور استھائیتو میں کچھ پرتیکول پربھاؤ نہیں پڑے گی۔ ہمارا یہ وشواس ہے کہ جتنی بھی سمسیا ہیں وہ سمسیا کا شانتی پورن سمادھان ہے، اس لیے ہم آگرہ کرتے ہیں کہ کسی بھی پکش کی اور سے شانتی استھائیتو اور دیش دیش کے بیچ کے سمبندھ کو پرتیکول پربھاؤ پارنے والے کسی بھی قدم نہیں چلنے چاہیے، سبھی کو چھتریہ شانتی اور استھائیتو میں یوگدان کرنا ہوگا۔ ہمارے وشواس یہ ہے کہ بھارت کی جو سکشم نیتریتو ہے وہ سمسیا کی صحیح ڈھنگ سے سمادھان کرنے میں کامیاب ہوگی۔
اس میں نیپال کی بھومیکا کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
نیپال تو شبھ کامنا دیتی ہے، ہمارے ضرور ایک سروکار ہے، وہاں کافی نیپالی لوگ بھی کام کرتے ہیں، ہم بھارت سرکار کے نکٹ سمبندھ میں رہ کر ان کا استھتی کا جائزہ بھی لے رہے ہیں، اور ابھی تک ہمارے سنتوش کی وشے ہے کہ سب نیپالی سرکشت ہیں اور ہمارے وشواس ہے کہ ان کو وہاں اسی طرح کی استھتی ملے گی جہاں ان کو کوئی سمسیا نہیں آئے گی۔ باقی ہم بھارت کے جس حساب سے بھارت آگے بڑھ رہا ہے وکاس کے دور پر، ہمارے اس میں شبھ کامنا ہے اور جتنی بھی اس کا یوجنا ہے پردھان منتری نریندر مودی جی کی، وہ صحیح دشا میں سفلتا پوروک آگے بڑھے گی۔
370 پر بھارت کو انتراشٹری آلوچنا کا زیادہ سامنا نہیں کرنا پڑا ہے، بھارت کی نیپال سے امید ہے، کیا آپ اس مدعے پر بھارت کا سمرتھن کرتے ہیں؟
ہم بھارت کی استھتی کو سمجھتے ہیں، ہم بھارت کے دوتاواس کے کلوز سمپرک میں ہیں، ہمارے دوتاواس بھی بھارت سرکار کے کلوز سمپرک میں رہ کر کام کر رہے ہیں، اور ہمارے جو شبھیچھا ہیں ہم نے اس کو آلریڈی شیئر بھی کر چکے ہیں۔
یہ تھے نیپال کے ودیش منتری پردیپ کمار گیاولی، ان سے بات کر رہی تھی بی بی سی سنواد داتا بھومیکا رائے۔ ادھر انوچھید 370 کو نرست کرتے ہوئے لداخ کو کیندر شاشت پردیش بنا دیا گیا ہے، اور ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ لداخ کے لوگ لمبے سمے سے اس کی مانگ کر رہے تھے اور اس فیصلے سے وہ کافی خوش ہیں، خاص طور پر لیہ کے لوگ۔ لیہ کے اکلوتے ڈگری کالج ای جی ایم کالج میں پڑھ رہی لڑکیوں سے بی بی سی سمواداتا کلدیپ مشر نے اس سمبندھ میں وستار سے بات کی۔
سوچتے ہیں بیوٹی ملا ہے، فائدہ ہے کہ کچھ نقصان بھی ہے؟
کچھ نقصان بھی ہے اور کچھ فائدے بھی ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ ہمارا یونیورسٹی کا جو ایگزام چلتا ہے تو پھر وہ لیٹ چلتا ہے، کبھی کبھی کچھ اس میں ڈسٹربس آتے رہتے ہیں، اگر یہاں پہ یو ٹی آئے تو ہم ان کے ڈومیننس میں نہیں رہیں گے، کشمیر کے وہاں پہ ایگزامس نہیں چلتے تو یہاں پہ بھی نہیں چلتے، تو ہم لوگوں کے جو گریجویشن کے وہ ڈگری ملتے ہیں وہ لیٹ ہو جاتا ہے۔
ٹھیک ہے، یہ ایک اکیڈمکس کا ایشو انہوں نے بتایا، آپ کا کیا نام ہے؟
میرا نام سونم یانگزس ہے۔
آپ بتائیے کیا سوچتے ہیں؟
میں سوچ رہی ہوں سر کہ ہمیں یو ٹی مل کے، زیادہ انفارمیشن تو مجھے پتہ نہیں ہے، بٹ پھر بھی ہم کشمیر کے اندر ہے، پھر کشمیر میں جو کچھ بھی ایشو ہو تو یہاں پہ پرابلم پڑتا ہے، جیسا کہ ہمارا گریجویشن انڈر 3 ایئر میں کمپلیٹ ہونا پڑتا ہے نا، ہمارا آج پہلے ہم جب فرسٹ سیمسٹر میں یہاں ایڈمیشن کر کے آئے ہیں تب سے ہم ابھی تک 4 سال ہمارا گزر گیا، کیونکہ وہاں پہ جو جتنا بھی جیسا بھی پرابلمس ہو تو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمیں اٹونو مس نہیں ہے وہاں پہ، کیونکہ ان کے انڈر ہمیں چلنا پڑتا ہے۔
آپ کو ایک تو یہ ہو گیا اسٹیبلش کہ ڈگری دیر سے ملتی ہے کشمیر کے حالات کی وجہ سے، رزلٹ بھی دیر ہو جاتا ہے۔ آپ کا کیا نام ہے؟
میرا نام دسکی چھول ہے۔
یہ بتائیے کہ ایک یہ بھی لوگوں کا یہ آشنکا ہے کہ جب یو ٹی ملا اچھا ہوا، الگ ہو گئے جموں کشمیر سے، لیکن 370 بھی ہٹ گیا، تو 370 کے ہٹنے سے کسی طرح کے کوئی نقصان یا کچھ آپ کو لگتا ہے کہ؟
ہاں نقصان ہے، کیونکہ جو ہمارا اسپیشل پریویلیج ہے جو لینڈ پروٹیکشن کا وہ ہٹ گیا، پھر وہاں سے جو باہر سے لوگ آئیں گے یہاں پہ انڈسٹری سیٹ اپ ہو جائیں گے، پھر میرے خیال سے لگتا ہے کہ مجھے میجورٹی رول چلے گا، پھر اس کے بعد
میجورٹی رول چلے گا مطلب باہر کے لوگ زیادہ ہو جائیں گے اور آپ لوگ کم ہو جائیں گے، ایسا آپ کو لگتا ہے، کیا سوچتی ہیں؟
یو ٹی ملنے سے ایک تو ہمارے لیے ایڈوانٹیج بھی ہے اور ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے، ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو جموں کشمیر میں جتنا فنڈ ملتے تھے وہ جموں میں تو ملتے تھے, لداخ میں اتنا زیادہ نہیں دیتے تھے. اب یو ٹی مل گیا تو ہمیں الگ سے فنڈ دیا جائے گا, جس سے ہمارا یہاں پہ وکاس زیادہ ہوگا, یہاں پہ ڈیولپمنٹ زیادہ ہوگا, جو ہمارے جاب اپرچونیٹی ہوگا وہ بھی ہمیں پوسٹ وغیرہ ملے گا, جاب اپرچونیٹی, ان امپلائمنٹ زیادہ نہیں رہے گا یہاں پہ. تو ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ جہاں پہ ابھی ہمارے جو لینڈ پروٹیکشن ہوتا ہے, لینڈ اپنے مطلب جو یہاں پہ جموں کشمیر میں دوسرے لوگ یہاں پہ آ کے نہیں ہماری زمین نہیں خرید سکتے تھے, ابھی وہ بھی یو ٹی کی وجہ سے ابھی دوسرے لوگ یہاں پہ آ کے زمین خرید کے وہ لوگ یہاں پہ بزنس بھی کر سکتے ہیں. ایک تو ہمارے یہاں پہ وکاس بھی ہو رہا ہے, ڈیولپمنٹ بھی ہو رہا ہے, ایک تو ہمارے نقصان بھی ہو رہا ہے.
اب تھوڑا سا کلیئرٹی اس پہ لیتے ہیں, اس طرف آ جائیے آپ لوگ, کہ ڈیولپمنٹ اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے. انہوں نے کہا کہ اب یو ٹی کے آنے سے ڈیولپمنٹ ہوگا, وکاس ہوگا, تو یہ تو ایک اچھی چیز بھی ہے, یہاں کے لوگوں کے لیے نوکریاں بھی پیدا ہوں گی. لیکن اس ڈیولپمنٹ سے اتنا ڈر کیوں ہے کہ یہ ہماری زمینیں بھی چلی جائیں گی, ہمارا انوائرمنٹ بھی خراب ہو جائے گا؟ اس پہ یہ تو بڑا دوند ہے, آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اس پہ؟ کیا نام ہے آپ کا؟
میرا نام ٹنڈو بنگمو ہے, اور میں مطلب تھوڑا آئی فیل ویری سیڈ بیکاز لداخ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ تھوڑا ولنریبل ہے, تو یہاں پر کلائمیٹ بھی مطلب ہارش ہے ونٹر میں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر یو ٹی آ رہا ہے تو مطلب بہت سارے اسٹیٹ سے یہاں پر سیٹل ہونا شروع ہوگا, پھر یہاں پر انوائرمنٹ مطلب پولیوشن زیادہ ہوگا, کیونکہ یہاں پر پاپولیشن بڑھے گا اور پولیوشن بھی بڑھے گا. تو مجھے مطلب آئی ایم فیلنگ ویری سیڈ.
تو آپ لوگ چاہتے کیا ہیں, اب کیا ہو؟ جیسے یو ٹی مل گیا, یو ٹی سب کو چاہیے تھا, ہے نا؟ ایسا لگتا ہے کہ جموں کشمیر سے آپ لوگ الگ ایک چاہتے تھے کہ وہاں کا شاسن نہ رہے. یو ٹی مل گیا ہے, اب آپ کیا چاہتے ہیں, کیا کیا جا سکتا ہے؟ 370 کو کیا دوبارہ چاہتے ہیں, اس کے جیسا کچھ چاہتے ہیں دوبارہ؟
ابھی یہ ہوگی سر, کیونکہ یو ٹی ملنے سے ہم لوگ, میرے اٹس پرسنل اوپینین, ابھی تک جتنے بھی یہاں جو لائک یوتھ لوگ ہیں, جو اسپورٹ پرسن ہے, ہم لوگ کے لیے اتنا یہاں پہ لداخ میں اتنا اچھا سا اسٹیڈیم بھی, انڈور اسٹیڈیم بھی نہیں ہے اور آؤٹ ڈور اسٹیڈیم بھی نہیں ہوتا, اتنا پلیٹ فارم اچھا نہیں ملتے ہیں جو باہر کے بچوں کو ملتے ہیں. پھر ہم میں ابھی یہ یو ٹی مل کے یہ بھی سوچنے ہیں لداخ میں بھی اتنا ڈپلوپمنٹ آئے, اسپورٹ میں بھی ہم آگے بڑھ کے نیشنل لیول انٹرنیشنل لیول بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اسی لیے میں
کھیل کی سویدھائیں آپ کو لگتا ہے کہ ادھر بڑھیں گی؟ کیونکہ
یہاں بہت سارے ابھی ٹورنامنٹ, وہاں یہاں ہمارا ڈسٹرکٹ لیول یہاں پہ ٹورنامنٹ بھی آرگنائز کرتے ہیں اولمپک کر کے, وہاں بہت سارے بچے ہیں جو ٹیلنٹڈ یہاں نکلتے ہیں, بٹ آگے لے جانے کے لیے اتنا ابھی تک مجھے نہیں دیکھا کہ اتنا پلیٹ فارم اچھا اچھا نہیں ملا.
تو لہ کے ڈگری کالج کی چھاتراؤں سے بات کر رہے تھے بی بی سی سنواددتا کلدیپ مشر. برٹین سے پرکاشت ہونے والی پرسدھ میڈیکل پترکا دا لینسٹ میں کشمیر مدے پر چھپے حالیہ سمپادکیے سے جڑا وواد بڑھتا ہی جا رہا ہے. اب بھارت کے آئی ایم اے نے بھی اس پر سخت ٹپنی کی ہے. سنیے بی بی سی سنواددتا پرینکا دوبے کی یہ رپورٹ.
پرتشٹھت انتراشٹریہ میڈیکل جرنل لینسٹ نے اپنے حالیہ انک کی سمپادکیے میں بھارت سرکار دوارا کشمیر سے انوچھید 370 ہٹانے کی کڑی آلوچنا کرتے ہوئے وہاں ہو رہے مانو ادھیکاروں کے کتھت ہنن پر سوال اٹھائے ہیں. سنیے اس سمپادکیے میں کیا لکھا ہے.
کشمیر میں ٹیلی فون لائنوں, موبائل اور انٹرنیٹ پر لگی پابندیوں کے ساتھ ساتھ وہاں لگاتار جاری ملٹری کرفیو استھانیہ نواسیوں کے سواستھ, ان کی سرکشا اور ان کی ناگرک سوتنترتا پر کئی چنتا جنک سوال کھڑے کرتا ہے. بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی کا کہنا ہے کہ کشمیر کی سوایتتا ہٹانے کا نرنے وہاں سمردھی لے کر آئے گا, لیکن اس سے پہلے کشمیر کے لوگوں کو وہاں دشکوں سے جاری ہنسا سے ملے زخموں سے نجات چاہیے, نہ کہ ہنسا اور الگاؤواد کا ایک نیا دور.
ادھر لینسٹ کے سمپادکیے کے خلاف کڑا جوابی پتر لکھتے ہوئے انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن یا آئی ایم اے نے کہا کہ سواستھ کی آڑ میں راجنیتک ٹپنی کر کے لینسٹ نے چکتسکیہ پرکاشن ہونے کے سدھانتوں کا اولنگھن کیا ہے. سنیے بی بی سی سے بات چیت میں آئی ایم اے کے ادھیکش ڈاکٹر شانتنو سین کیا کہتے ہیں.
چار لاکھ سے ادھک سدسیہ ڈاکٹروں کے ساتھ انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن دنیا کا سب سے بڑا چکتسکیہ سنگٹھن ہے.
हमारा विश्वास है कि चिकित्सकीय संगठनों और पत्रिकाओं को स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर लिखना चाहिए। अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दों पर बहस हो सकती है, यहाँ जो हो रहा है आप उससे सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यह भारत का निजी मामला है। विदेश में प्रकाशित हो रही लैंसेट पत्रिका भारत के निजी कूटनीतिक मामलों पर कोई टीका टिप्पणी करे, यह हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।
2015 में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर नामक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन द्वारा जारी किए गए एक निजी सर्वेक्षण के नतीजों के अनुसार कश्मीर में रहने वाली लगभग 45% आबादी मानसिक तनाव का शिकार है। घाटी में फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रियंका दुबे, BBC।
और अब अखबारों की समीक्षा का वक्त है, बताएं आदर्श क्या कहते हैं अखबार।
जी, लगभग सभी अखबार, हिंदी अखबार हों, अंग्रेजी अखबार हों, सभी अखबारों के पहले पन्ने पर पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम की खबर जो है वो सुर्खियों में है। और पंजाब केसरी लिखता है फरार चिदंबरम की तलाश, दैनिक भास्कर लिखता है सीबीआई ईडी घर पहुंची तो चिदंबरम छिपे, रात 11:30 बजे नोटिस चस्पा, 2 घंटे में हाजिर हों। साथ ही ये भी लिखा है कि किरदार बदले हालात वही, अखबार लिखता है कि 2010 में चिदंबरम गृह मंत्री थे, तब अमित शाह फर्जी एनकाउंटर केस में गिरफ्तार हुए थे, अब शाह गृहमंत्री हैं। इसके साथ ही पंजाब केसरी में खबर है कि 370 हटने के बाद घाटी में पहला एनकाउंटर हुआ। अखबार के मुताबिक सुरक्षा बलों और चरमपंथियों के बीच में जो मुठभेड़ हुई है और ये पहला एनकाउंटर है 370 हटाए जाने के बाद, 16 दिन बाद गोलियां चली हैं और ये बारामूला से ये खबर आई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में फेसबुक की उस याचिका को लेकर जो सुनवाई हुई, सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है, जिसके तहत ये मांग की जा रही है कि यूज़र्स की जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है उसको आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए, और ये मांग की गई कि जो भी मामले चल रहे हैं इसको लेकर उन्हें बॉम्बे से, मद्रास से और मद्रास हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि राजनाथ सिंह, भारत के जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अमरीकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर से फ़ोन पर बात की है और सीमा पार से होने वाले आतंकवाद का मुद्दा उठाया, और इसके साथ ही क्षेत्र में शांति बनाए रखने की भारत की कोशिश में अमरीका के सहयोग की भी तारीफ की। इसके साथ ही कश्मीर पर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाएगा, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिया है। उधर अमर उजाला कहता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में रातों रात लगा दी गई सावरकर, बोस और भगत सिंह की प्रतिमाएं, टेंट में छिपाकर प्रतिमाओं को लाया गया और आर्ट्स फैकल्टी के बाहर इन्हें स्थापित कर दिया गया। अखबार के मुताबिक डूसू अध्यक्ष ने यह काम किया है जिसके बाद विवाद हुआ और जो बाकी संगठन थे उन्होंने ABVP के इस कदम का विरोध किया। उधर प्रशासन का ये कहना है कि अगर इन प्रतिमाओं को हटाया नहीं गया तो FIR दर्ज करवाई जाएगी।
बहुत शुक्रिया आदर्श आपका अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब एक खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भतीजे रातुल पुरी को प्रवर्तन निदेशालय ने 354 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर लिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इस बैंक धोखाधड़ी मामले में पहली सूचना रिपोर्ट भी दर्ज की थी और सोमवार को 6 स्थानों पर छापे मारे थे। पेश है भोपाल से सूर्य न्याजी की रिपोर्ट।
रातुल पुरी इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म मोजर बेयर के पूर्व वरिष्ठ कार्यकारी हैं। उन्हें और 4 निदेशकों को CBI ने राज्य द्वारा संचालित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दायर एक शिकायत में आरोपित किया है। रातुल पुरी हाल के महीनों में टैक्स धोखाधड़ी से लेकर ऑगस्टा वेस्टलैंड चॉपर घोटाले तक कई अलग अलग जांचों के केंद्र में रहे हैं। पिछले शनिवार को उन्होंने दिल्ली की एक अदालत को बताया वह चॉपर घोटाले की जांच में शामिल होने के इच्छुक थे, जबकि उनके खिलाफ जारी जमानत को बिना किसी वारंट के रद्द करने की मांग की गई थी। जांच एजेंसी ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया था कि पूरी ऑगस्टा वेस्टलैंड चॉपर सौदे से जुड़े एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जाँच का सामना कर रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा,
जो बिजनेस से मेरा कोई संबंध नहीं, कभी संबंध रहा भी नहीं, पर ये गिरफ्तारी जो करी गई है मैं इसे मानता हूँ ये मैलाफाइडी है और सब संस्थाओं का जिस प्रकार उपयोग किया जा रहा है, राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है, ये बड़ी दुख की बात है। मुझे पूरा विश्वास है कि अदालत इसका सही फैसला करेगी।
रातुल पुरी की कंपनी मोजर बियर ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया जैसे कि कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD या स्टोरेज डिवाइसेस बनाती है। मामला तब का है जब वह इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। उन्होंने 2012 में इस पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उनके माता पिता अपने पद पर बने रहे। CBI FIR के मुताबिक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कंपनी के खिलाफ कराई गई शिकायत में बताया था कि पुरी की कंपनी साल 2000 से ही कई बैंकों से लोन ले रही थी और इस दौरान कई बार डेब्ट स्ट्रक्चरिंग की गई है, लेकिन जब कंपनी कर्ज नहीं चुका पाई तो एक फॉरेंसिक ऑडिट किया गया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 20 अप्रैल 2019 को इस अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दिया। बैंक ने आरोप लगाया है कि बैंक की तरफ से कंपनी को दिए गए फंड का गलत तरीके से और कंपनी के डायरेक्टरों के निजी जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया गया है। शुरह न्याजी, बीबीसी न्यूज भोपाल।
और अब चलते हैं जम्मू। भारी बारिश के चलते देश के उत्तर में मौजूद कई राज्य फिलहाल बाढ़ की चपेट में हैं। जम्मू में कई नहरें और नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सोमवार को ऊपर हुई बारिश के पानी के कारण तवी नदी में पानी अचानक बढ़ने लगा और मछली पकड़ने गए कुछ मछुआरे नदी में फंस गए। राहत और बचाव कार्य में लगे भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडोज ने 4 मछुआरों की जान बचाई। एक मछुआरे की जान बचाने के अभियान के दौरान हेलीकॉप्टर से बंधी रस्सी बीच में ही टूट गई। इसके बाद आगे उन्हें कैसे बचाया गया, सुनिए जम्मू में हमारे सहयोगी मोहित कंधारी की इस रिपोर्ट में।
मछली पकड़कर अपना पेट पालने वाले कुछ मछुआरे रोज की तरह सोमवार सुबह भी अपने काम पर निकले थे। उन्होंने अभी ठीक से जाल भी नहीं बिछाया था कि अचानक तवी नदी में पानी बढ़ने लगा। पहले तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे पानी की रफ्तार बढ़ने लगी वो अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगह तलाशने लगे। छपरा जिला के रहने वाले जोबन प्रसाद और उनके साथी एक जगह पर फंसे थे, उन्होंने बीबीसी को बताया।
हम लोग मछली पकड़ने गए थे, पानी कम था, पानी बिल्कुल कट था पानी, तो हम लोग सोचे कि पानी नहीं आएगा। मौसम भी ठीक था, अब ये तो थोड़ी पता था कि ऊपर बारिश हुआ है तो ऊपर से पानी आएगा। पानी आ गया तो हम लोग कुछ दूर भागे, उसके बाद ज्यादा पानी हो गया तो हम लोग सीढ़ियों पर चढ़ गए।
जहाँ पानी से लबालब भरी नदी में एक तरफ जोबन और उनके एक साथी फंसे थे, वहीं दूसरी तरफ एक और मछुआरे श्री भगवान सहनी भी पानी में फंसे थे। उन्होंने बीबीसी को अपनी आप बीती बताई।
हम लोग क्रॉस किए थोड़ा सा तभी में, उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे हम लोग ऊपर चढ़े उस पर एंगल पर, उस पर बैठ गए तब तक पानी आ गया तुरंत। जाल भी न सेट किए, जाल भी मतलब गीला नहीं हुआ, ऐसे सूखा पड़ा था जाल।
जम्मू में तो बारिश नहीं हुई थी, लेकिन ऊपर पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश हुई थी, जिस कारण नदी का पानी सवेरे 11 बजे के बाद से अचानक बढ़ने लगा। भगवती नगर के पास पुल के ऊपर से गुजर रहे लोगों की नजर जान बचाने की कोशिश करते इन मछुआरों पर पड़ी। उन्होंने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस अधिकारियों को दी। कुछ ही देर में नदी के पुल पर जाम लग गया। पुलिस और एसडीआरएफ के अधिकारियों से सूचना मिलने के बाद वायुसेना के अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई और बचाव कार्य शुरू हुआ। ग्रुप कप्तान संदीप सिंह ने बताया कि 12 बजे के आसपास उन्हें खबर मिली।
इमीडिएट प्रोवाइड दिया गया, 1229 हेलीकॉप्टर वाज हियर। इनिशियली हमने रोप लेडर से रिकवरी सोचा था, बट सीइंग द सिचुएशन दैट फिशरमैन वुड नॉट बी एबल टू, अपने रोप लेडर से नहीं अपने आप को खींच पाएंगे, हमने इमीडिएटली एयर में यहाँ पे डिसीजन लिया और अपना गरुड़ कमांडो को नीचे भेजा, उसने हुक करा दोनों फिशरमैन को और उसके बाद वो ऊपर लेकर गया।
वही जोबन प्रसाद बताते हैं, जब हेलीकॉप्टर उन्हें रस्सी के सहारे ऊपर ले जा रहा था उस वक्त रस्सी इस बीच में टूट गई।
जो सीढ़िया था वो सड़ा हुआ था पहले का, हम लोग जैसे चढ़े जैसे सीढ़ी टूट गया ऊपर से, फिर हम लोग पानी में गिर गए। पानी में गिरे तब हम लोग का खतरा था, नहीं तो वहाँ बैठे थे ना उस समय हम लोग कोई खतरा नहीं था, हम सेफ थे।
ग्रुप कप्तान संदीप सिंह बताते हैं, ऐसी स्थिति में यह अभियान और अधिक खतरनाक बन गया, लेकिन खास रूप से प्रशिक्षण प्राप्त कमांडो ने कोशिश जारी रखी।
अपनी जान की परवाह न करते हुए वो सेकेंड टाइम नीचे गया वॉलंटियर करके, जिसको स्पेशलाइज ट्रेनिंग है उसको, और इसके लिए वो नीचे गया, दोनों को हुक करके ऊपर लाया और दोनों जाने बचाई।
जोबन प्रसाद बताते हैं, बचाव कार्य के दौरान उन्हें चोट लगी थी, लेकिन उनका हाल पूछने कोई नहीं आया।
पुलिस वाले ले गए थे, अपना पूछताछ किया, उसके बाद छोड़ दिया उन्होंने, ठीक है। फिर हम लोग के अपना ही बंदा गया था जमानत देने के लिए, वो बंदा ले आया और हमारा इलाज वलाज कराया, पैसा हमारा ही लगा, पैसा तो किसी को लगा नहीं।
थोड़ी मशक्कत के बाद वायुसेना ने तवी नदी में फंसे 4 मछुआरों की जान बचा ली, लेकिन बिहार से आकर जम्मू में काम करने वाले इन मछुआरों के दिल में इस बात का गम रह गया कि मछली विभाग के अधिकारी मछली पकड़ने का लाइसेंस तो देते हैं, लेकिन उनमें से कोई उनका हाल जानने तक नहीं आया। मोहित कंधारी, बीबीसी जम्मू।
और चलते चलते सुन लेते हैं प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश की है। ट्रंप प्रशासन ने ताइवान के साथ F-16 लड़ाकू विमानों का सौदा करने की मंजूरी दी है। इस सौदे के तहत ताइवान को 66 लड़ाकू विमान बेचे जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को खारिज किया है कि अमरीका की अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ रही है। इटली के प्रधानमंत्री जुसापे कॉन्ते ने पद छोड़ दिया है। राष्ट्रपति ने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अमेरिका और डेनमार्क में लाखों लोगों की स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियों के आधार पर किया गया शोध बताता है कि वायु प्रदूषण को मानसिक बीमारियों और अवसाद से जोड़ा जा सकता है। कट्टरपंथी विचारधारा के प्रति पूर्वाग्रहों के आरोप को लेकर फेसबुक ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट जारी कर दी है। पूर्व रिपब्लिकन सीनेटर जॉन कॉयल ने इस रिपोर्ट में पाया है कि फेसबुक को दक्षिणपंथियों का विश्वास जीतने के लिए बहुत कुछ करना होगा। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली अजीत सारथी ने। आपसे अगली मुलाकात होगी शाम 7:30 बजे कार्यक्रम दिन भर में। लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप 24 घंटे आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।